आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज, अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। धमाके के बाद से ही प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय, हिरासत में लिए जा रहे हैं संदिग्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को मिशन बनाकर काम कर रही है सरकार। और CISE ने जारी किए कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। वहां की 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। राज्य में इस बार 1952 के बाद से अब तक का सर्वाधिक 67.13% मतदान हुआ। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
टोटल हमारे 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं, जहां बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स CCTV वीडियोग्राफी से फुली कवर्ड हैं और 8 बजे से मतगणना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9:15 से हम लोग रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब तक कम्प्लीट नहीं होगा चलता रहे।
विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में लगभग 12,33,00,000 से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यह संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में SIR शुरू किया है। यह गणना अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस की टीमें संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। UPATS ने कानपुर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को बुधवार की देर शाम उनके घर से हिरासत में ले लिया। ATS की एक टीम दिल्ली आतंकी हमले से कथित तौर पर जुड़े आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में पूछताछ करने के लिए कल शाम लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के GS मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को भी हिरासत में लिया है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं।
जांच एजेंसियां जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, जांच कर रही हैं। जांच से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, बहुत संवेदनशील प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं, सभी जनपदों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है सतर्कता बरतें, निगरानी बरतें। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे जनपद हैं उसमें गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस इकाइयां सक्रियता के साथ काम कर रही हैं और हर बिंदु को जांचा परखा जा रहा है।
प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश के नॉर्दर्न जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एक रिपोर्ट।
मिर्जापुर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश के नॉर्दर्न जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वाराणसी ने दूसरा और जालौन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चित्रकूट को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। इन जिलों को जल संरक्षण और संचयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरव हासिल हुआ है। विजेता जिलों को 2-2 करोड़ रुपए और चित्रकूट को 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कल लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार जनजाति समुदाय को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है।
जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया।
18 नवंबर तक चलने वाले जनजाति भागीदारी उत्सव में 18 राज्यों के लगभग 600 प्रसिद्ध जनजातीय कलाकार अपने पारंपरिक नृत्य, गीत और वाद्य प्रस्तुतियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का संदेश देंगे। वहां पारंपरिक व्यंजन, जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, लोक चित्रकला और जनजातीय आभूषणों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग टीबी के उन्मूलन में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जल्द सफलता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नवीनतम वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह प्रतिशत इस रोग की वैश्विक गिरावट दर से लगभग दोगुनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के मंत्र को अपनाकर टीबी उन्मूलन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हमारा देश शीघ्र पहचान, निदान और सामुदायिक भागीदारी में नए मानक स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी टीबी उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह की कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यक्षता की। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे संतोष कुमार गंगवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसका उपयोग समाज के कल्याण, मानवता के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर मंथन करने के लिए कृषि विभाग लखनऊ में 17 नवंबर को जनसंवाद एवं विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें लगभग 300 कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और अधिकारी शामिल होंगे। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
यहाँ विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री ने भारत का 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा। उसमें से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी होगी।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISE ने कक्षा 10वीं ICSE और 12वीं ISC की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी और 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा का परिणाम अप्रैल मई में घोषित किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट CISE.org पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में 17 नवंबर तक सुबह के समय हल्के कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज, अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। धमाके के बाद से ही प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय, हिरासत में लिए जा रहे हैं संदिग्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को मिशन बनाकर काम कर रही है सरकार। और CISE ने जारी किए कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।